قال اذهب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دفع ہو جا، جا نکل جا، فمن تبعک منہم، جو کوئی پھر پیروی کرے گا تیری ان میں سے، کن میں سے؟ ذریت میں سے آدم کی، فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، تو تم ساروں کا بدلہ پھر جہنم ہوگا، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کوئی کمی نہیں ہوگی پھر. اس سے زیادہ واضح کیا بات ہو سکتی؟ شیطان کے راستے پر چلنا لیڈس ٹو جہنم، اس کے فالو کرنا سیدھا سیدھا جہنم کا سودا کرنا. جہنم اپنے لیے ٹھکانہ بنانا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالی نے اسی دن یہ فیصلہ بھی سنا دیا تھا کہ انجام کار کیا ہوگا، اور اس کو مہلت قیامت تک کی دے دی. قیامت تک اس نے زندہ رہنا ہے، اس کو موت نہیں آنی. باقی جنات کو موت آ جاتی، اس کو نہیں موت آنی. یہ جنوں میں سے تھا نا، کانا من الجن، قرآن پاک میں پتہ چلتا ہے کہ یہ جنوں میں سے تھا. وہ اس کو موت نہیں آنی قیامت کے دن تک، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی اور یہ فیصلہ بھی سنا دیا کہ جو کوئی فالو کرے گا تجھے، تجھے کہتا ہے نا کہ میرے فالوورز ہوں گے، اور بہت تھوڑے سے، یعنی اکثریت میرا کہنا مان لے گی، اکثریت تو تھوڑے سے رہ جائیں گے جو نہیں مانیں گے کہنا، تو پھر جتنے، اس کا مطلب ہے اس کے فالوورز ہوں گے سارے جہنم میں جائیں گے. اور ابلیس اور سارے اس کے فالوورز کو یہ بات سنا دی گئی، اچھی طرح سمجھ جاؤ یہ ہے ٹھکانہ. اس سے پتہ چلتا ہے، اس کا اپوزٹ کر لیں، کہ اس کا مطلب ہے جو شیطان کو فالو نہیں کرے گا وہ جنت میں جائے گا. سمجھ آ گئی بات؟ جس نے بھی اللہ کو بھلا کے اس کا راستہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پرواہ نہیں کی، اس کے حکموں پہ چلا، وہ یہاں پہنچے گا. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تو کر لے جو کرنا ہے، تو ان کے اوپر اپنی، ان کو بہکا بھی لے، ان کو، ان کے اوپر اپنے لشکر بھی چڑھا لے، ان کو ساتھ یہ بھی کر لے، یہ بھی کر لے. یہ بات آگے آ رہی ہیں باتیں، اور یہاں سے ہمیں بہت اچھی طرح کلیئر ہو جاتا ہے کہ شیطان کی ٹیکٹکس کون سی ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی اس کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا جا کر لے جو کرنا ہے، بے شک تم جا کے یہ کرو، بے شک اب تم جا کے فلاں چیز کرو، فلاں چیز کرو، مجھے نہیں کوئی پرواہ، جاؤ تم جا کے جو تم نے کرنا کرو. تو وہ چیز ہے یہاں پہ، اور اس سے ہمیں یہ سارے اندازے ہوں گے کہ کیا کیا وہ کرتا ہے، اور اس سے ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ وہ کس کس طرح انسان کے اوپر حملے کرتا ہے. اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ اس کو جب یہ پتہ چلا کہ میں تو اب جہنم میں جاؤں گا ہی، تو اس نے یہ کہا کہ میں اکیلا کیوں جاؤں، میں تو اب اس کو ساتھ لے کے جاؤں گا، کیونکہ اس کی وجہ سے میں رابطہ درگاہ ہوا، اس کی وجہ سے میں رجیم ہوا، اس کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں گر گیا، اور میں اس کی وجہ سے نکالا گیا، اس مقام سے گرایا گیا، تو میں تو نہیں اس کو چھوڑوں گا. اور اس کی دشمنی ایسی ہے کہ ٹھیک ہے ایک دشمنی ہوتی ہے اس سے، آدم سے دشمنی ہو گئی، میں تو اس کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا. یعنی کتنا زیادہ اس کے اندر حسد اور کیسی آگ لگی. جب کوئی کہتا نا میں تو اس کی نسلوں کو بھی، نسلوں تک جاؤں گا، تو سوچیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ نسل انسانی کو بھی اس نے یہ چیلنج دے دیا کہ میں نسل انسانی کو بھی جڑ سے اکھاڑ کے رہوں گا، ان کو بھی نہیں میں نے سلامت رہنے دینا، میں ڈوبا ہوں تو سنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے. یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، انسان کو بہکانے کا، تاکہ وہ ان کو بھی ساتھ جہنم میں لے کر جائے. اس سے کم پہ اس کو چین نہیں آنا. اسی لیے سب سے بڑا گناہ پہلے انسان سے کرانے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہے شرک. और आज शिर्क में तो इंसान पहले तो मुशरिक वो होते थे कि जो आप पढ़ेंगे, पढ़ा भी आपने, मुशरिकी ने मक्का क्या कहते थे, हम अल्लाह पे तो ईमान रखते हैं और फिर हम अल्लाह ताला के साथ फिर और शरीक कर देते थे, फिर कहते थे ये हमें अल्लाह के करीब कर देंगे, ये मतलब उनका एक कहने को आप ये कह सकते हैं कि उनका एक नीयत तो अच्छी थी ना, वो तो अल्लाह के करीब ही होना चाहते थे ना, उनका जो तरीका था वो शिर्क का था, ठीक है, तो वो एक अपनी जगह गलत थे। आज तो वो हाल है कि लोगों को ये भी नहीं परवाह कि हमें अल्लाह के करीब होना, सीधा सीधा सैटनिक वर्शिप इसकी तरफ जाते हैं, से शैतान की पूजा, लूसिफर आर लॉर्ड ये कहते हैं, लूसिफर शैतान को कहते हैं। तो इसने देखें किस तरह आज कंज्यूम कर लिया इंसानियत को, तो पहले तो एक शिर्क था ना, जो कि वो तो नहीं मानते थे कि हम कोई बुरा काम कर रहे हो, तो यही कहते थे हम तो एक अच्छा ही कर रहे हैं, अल्लाह के करीब ही हम होना चाह रहे हैं, हम क्या बुरा कर रहे हैं। लेकिन आज तो शैतान ने उससे भी हटा दिया, अल्लाह के करीब होने की भी क्या जरूरत है, तो मेरी सीधी पूजा करो, हम तो फखर से बोल रहे हैं। तो क्या उसके टैक्टिक्स हैं, वो कैसे ऑपरेट करता है, क्या तरीके इख्तियार करता है, वो जो अल्लाह ताला ने उसको इजाजतें दे दी, वस्तफ़ज़िज़ मन इस्तताता मिनहुम बिसौतिका, और बहका ले उकसा ले जिसको भी तू इस्तताता रखता हो इनमें से अपनी आवाज के जरिए, अपनी आवाज के जरिए जिसको भी तू बहका सकता है बहका ले। शैतान की आवाज कौन सी होती है, इसकी भी एक आवाज है, जाहिर है वो कोई आवाज लेके तो हमारे पास नहीं आता। हम मसला ये हो रहा है आराफ में, अल्लाह ताला ने फरमाया है ये वो दुश्मन है ना कि जिस जो तुम्हें देख सकता है तुम इसको नहीं देख सकते, प्रॉब्लम यही है कि हमारे सामने नहीं है, लेकिन ये जितनी भी कभी इसकी शक्लें बनाई जाती हैं वो वाकई ऐसा ही है, ऐसा नहीं कि इंसान खुद ही कोई ऐसे ही बस पोर्ट्रे किया हुआ है, नहीं वो उतना ही कभी उतना ही डरावना और बदशकल है जिस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है, उससे भी कहीं ज्यादा। उसको कह दिया गया तो वो अपनी आवाज से बहका ले, अब वो आवाज असल में वो उसकी आवाज तो हम सुन नहीं सकते, पर वो कुछ आवाजों को जरिया बनाता है, उनको टूल बनाता है, वो उसका मेथड है हम तक पहुंचने का। और उनमें कौन सी आवाजें हैं, जो भी आवाज अल्लाह की नाफरमानी की तरफ बुलाने वाली है वो आवाज शैतान की आवाज है। और बस तफजिस कहते हैं किसी चीज को हल्का समझना, हल्का समझ के वो शैतान शैतान इंसान को बहकाता है, या किसी को घबराहट में मुब्तिला करना आवाज के जरिए। तो जितनी ऐसी आवाजें हैं ना वो सारी शैतानी आवाजें हैं, और इनके अंदर मुफस्सिरीन सहाबा मुफस्सिरीन है, ये अब मेरी बात नहीं हो रही, मैं अपनी बात नहीं कर रही, सहाबा जो बड़े बड़े इब्ने अब्बास हैं, मुजाहिद हैं, बड़े बड़े जो सहाबा कराम, और ये तो ताबई हैं, खैर मुफस्सिर कुरान है बहुत बड़े, लेकिन इब्ने मसूद हैं, इब्ने अब्बास का तो आपको पता है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की थी कि अल्लाह ताला इनको कुरान का फहम अता फरमा, ये इल्म अता फरमा, तो उनके लिए खास खसूसी दुआ है। उन्होंने इसकी क्या इंटरप्रिटेशन की है, कि तफसीर क्या की है, कि सऊत शैतान की सऊत क्या है, उन्होंने कहा कि शैतान की सऊत है गाने बजाने बाजे म्यूजिक, ये शैतान की सऊत उन्होंने कहा है। अब आप कहेंगे नहीं जी ऐसे ही पता नहीं म्यूजिक के पीछे पड़े हुए, तो कोई पेड़ नहीं हुआ, ये तो सहाबा ने तफसीर की है। वैसे तो हर आवाज जो अल्लाह ताला की मासियत की तरफ नाफरमानी की तरफ बुलाए वो शैतान की आवाज, उसमें जितनी फोहश बातें हैं, बेशर्मी बेहयाई की बातें, झगड़े गालियां, जितनी भी ऐसी आवाजें हैं जो इंसान को गुमराह करने वाली हैं, वो सब उसमें आ जाती हैं। लेकिन जब हम तफसीर से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सहाबी ने या सहाबा कराम ने तफसीर में इसकी कहा है कि शैतान की बेसिक आवाज म्यूजिक है। म्यूजिक। अब म्यूजिक कैसे इसकी आवाज हो गई? ऐसे तो हम बाकी भी चीजों के ऊपर बात करेंगे कि कैसे और भी आवाजें हैं देखें शैतान की, जिनके अंदर ये झगड़े और ये सारी बातें आ जाती हैं, लेकिन पहले म्यूजिक के ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखिए, जब इंसान म्यूजिक सुनता है ना, तो उसके असरात इंसान के ऊपर होती है। अब वो कोई लोग कहते हैं नहीं, हमारे पर तो कोई असर नहीं होता। आप ये देखें कि ये किसी भी मूवी में कितना सारा म्यूजिक होता है। रोमांटिक सीन का अलग म्यूजिक है, सैड सीन का अलग म्यूजिक है, जब डरावने सीन आते हैं उनके अलग म्यूजिक है, और जब कोई लड़ाई झगड़ा होता है तब अलग म्यूजिक है। क्योंकि हर म्यूजिक के डिफरेंट इम्पैक्ट है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है म्यूजिक इंडस्ट्री, वो उस पूरी मूवी के ऊपर डिफरेंट म्यूजिक सेट करते हैं उसके पीछे, क्योंकि वे इम्पैक्ट करते हैं। उसी सीन को आप आवाज बंद करके देखें, वो ड्रामा है मूवी जो भी है, तो वो इम्पैक्ट नहीं आता। वो चाहे कोई डरावना सीन हो, कोई इम्पैक्ट ही नहीं आता। लेकिन जब वो ऐसी आवाजें पीछे कर देते तो दिल वैसे ही धक धक करना शुरू हो जाता। तो ये जो म्यूजिक की पूरी इंडस्ट्री है, ये इसलिए ये वाकई म्यूजिक के काम करता है इंसान के ऊपर, तो तभी इसको इतना प्रोमोट किया जाता है। और तमाम जो फुकहा आइम्मा कराम है, तमाम फिकही मजाहिब है, उन सब में म्यूजिक को हराम करार दिया। हनफी मजहब में तो इतनी ज्यादा ममानियत है कि ये कहा गया कि जो म्यूजिक सुनता है ना, ना सिर्फ ये कोई वो हराम है ये काम करना, बल्कि इस बंदे की तो गवाही भी कबूल नहीं है जो म्यूजिक सुनता है। म्यूजिक इंडस्ट्री को आप उठा के देखें, म्यूजिक के साथ क्या बातें की जाती हैं? हराम रिलेशनशिप्स की बात, आशिकी की बात, बंदगी की बात, तू मेरी जिंदगी, तू मेरी फलां, ये बातें। ये कोई अपनी बीवी के लिए नहीं कह रहा होता, महबूबा के लिए कह रहे होते। अल्लाह ताला की बंदगी से दूर करके और किसी और तरफ ही दिमाग को, जूं ही आप वो म्यूजिक और वो सारी शायरी सुनते हैं ना, आपके अंदर जो जज्बात हैं, आपकी जो तबीयत है, उसके अंदर एक असर होता है। इंसान झूमना शुरू हो जाता है, इंसान की एक जैसे एक सरूर किसी कैफियत जहन पे आ जाती है, इंसान के अंदर रोमांटिक जज्बात उभरने लगते हैं, सेक्सुअल जज्बात उभरने लगते हैं। रैप म्यूजिक को उठा के देख लें, गालियों से भरा हुआ है। हार्ड रॉक को उठा के देख लें, उसमें शैतानी बातों से भरा हुआ। बड़े बड़े ये म्यूजिशियंस, आज के सिंगर जो हैं, वो किस किस तरह की लिरिक्स हैं आप हैरान होंगे। जैसे आई सोल्ड माई सोल टू द डेवल, साफ बोल रहे हैं, हेल की बातें उसके अंदर, हेल की सिंबल्स हैं, हेल दिखाई जाती है, शैतानी चीजें बनाई हुई हैं, खून और रेड और ब्लैक कलर को साथ कंबाइन करके दिखाया जाता है। ये ह्यूस्टन में जो बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हुआ था और यहाँ पे कई लोग मर गए थे उस कॉन्सर्ट में, उसमें अगर आप देखें तो उसमें क्या सिंबल्स थे, हेल भी दिखाई हुई थी और शैतानी चीजें भी बनाई हुई थी। और वो बंदा भी एक एजेंडे के साथ आया था, जो सिंगर था, लोग मार रहे हैं और वो गाना गाता जा रहा है। उसको एक, मैंने आपको जैसे बताया, इसके वादों के ऊपर हम आएंगे तो बात होती, बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि ये वादे करता है उनसे कि मैं तुम्हें ये चीजें दूंगा, ये पावर्स दूंगा, तुमने ये काम करना है, इसी के एजेंडे पे वो काम कर रहे थे। तो अब लोग कहते हैं अब हम क्या करें, हम तो म्यूजिक से आज बच ही नहीं सकते, जिधर जाएं म्यूजिक है, वो उधर भी म्यूजिक, उधर। ठीक है, आपकी बात सही है, अब ग्रोसरी करने जाएं वहां पे म्यूजिक, अब रेस्टोरेंट में बैठे वहां म्यूजिक, अब क्या करें? लोग कहते हैं लो जी कि ये आप क्या बात करते हैं, हम आप क्या जीना छोड़ दें, क्या करें? तो एक हदीस से हमें पता चलता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में जब बांसुरी की आवाज आई थी, तो आपने अपने कानों में उंगली उंगलियां ठूंस ली थी, और हज़रत इब्ने अब्बास से फरमाया कि क्या ये आवाज बंद हो गई है? उन्होंने कहा नहीं, तो आपने ठूंसी रखी। और फिर जब उन्होंने कहा कि हाँ बंद हो गई, तो फिर आपने उंगलियां निकाली। इससे क्या पता चला? वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकवा इतना ज्यादा था कि आपने कानों में उंगलियां डाल ली, लेकिन इब्ने अब्बास से ये नहीं कहा कि आप उंगलियां डाल लें। तो इससे पता चलता है जहां पे मजबूरी है आप कोशिश तो ऐसी करें कि ऐसी जगहों पे जाना ही ना पड़े। चले गए हैं तो कोशिश करें कि वहां पे आप उनको बहुत नाइसली रिक्वेस्ट करें कि जी आप ये बंद कर दें, नहीं तो कम से कम इतना हल्का कर दें। और अगर ये भी नहीं कर सकते, मसलन एयरपोर्ट्स हैं, मसलन जहाजों के अंदर लगा हुआ है, मसलन ऐसी जगह जहां पे आपको कोई बस ही नहीं है, तो आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं करें। तवज्जो करके उसको कि मैं भी बड़ा मजा लूं, जरा मुझे पुरानी यादें आ रही हैं, हाँ ये गाना तो मैंने सुना हुआ था, खुद भी गुनगुनाना है, मैं क्या करूं जी मेरी मजबूरी, ये नहीं करना। आप तब तक गुनाहगार नहीं होंगे जब तक आप मजबूर हैं और आप उस पे कान नहीं धर रहे, क्योंकि इमाम इब्ने तैमिया कहते हैं कि म्यूजिक का ताल्लुक इस्तेमा से है, यानी आप गौर से जब सुनेंगे तो उसके ऊपर गुनाह है। जैसे कि कुरान को जब आप गौर से सुनते हैं तो उसके ऊपर अजर है, मगर कोई रास्ते में चल के जा रहा है या कोई कोई से दुकान में एंटर हुआ है वहां पे कुरान चल रहा है, तो इसके ऊपर इसको थोड़ी अजर मिल जाना कि आपने कुरान सुना था। वो तो उस दुकान वाले को मिल रहा है या वो जिसने चलाया वह उसको मिल रहा है। आप बस गुजरते हुए आपके कानों में आवाज पड़ गई, आपके कानों में अजान की भी आवाज पड़ती है, उसे आपको थोड़ी अजर मिल जाता है। बहुत काफिर भी जा रहे हैं, उनके भी कानों में आवाज पड़ रही है तो उनको थोड़ी अजर मिलेगा। इसी तरह म्यूजिक लगा हुआ है ना, और आप अगर इस पे कान नहीं धरते, वो बैकग्राउंड में लगा हुआ, तो और आप मजबूर हैं वहां पे, आपका बस भी नहीं चलता, तो तब तो आप इससे आपको इंशाल्लाह गुनाह नहीं होगा। और वैसे ही देखें, जहां पे हमारा थोड़ा बहुत भी बस चलता है तो हम थोड़ी कोशिश तो किया करें, थोड़ा सा अपने अंदर हिम्मत तो लेकर आए, थोड़ा सा इस चीज को यानी नापसंदीदगी का इजहार तो करें, क्योंकि खास तौर पे ये बिजनेसेस है ना, ये तो देखते हैं हमारे कस्टमर को क्या चीज अच्छी लगती है। अगर आप नाइसली उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको जरा कम करना, इस रेस्टोरेंट में गए या आप किसी स्टोर में, आप यहाँ किसी, आप बोल नहीं सकते, किसी कार्ड वगैरह पे लिख के आप उनको दे सकते हैं। मसलन आप कह सकते हैं, एलिमिनेशन ऑफ म्यूजिक विल मेक द सर्विस ऑफ योर स्टोर मोर प्लेजरेबल फॉर अस, फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई बात लिख सकते हैं ना, कोई बड़ी नाइस सी। ये नहीं आपने लिखना हमारे इस्लाम के अंदर ये हराम है, उनको क्या, वो कहते हैं हमारे के, हमें क्या तुम्हारे इस्लाम में जो भी है, नहीं यार आप उसको बताएं कि देखो तुम्हारे कस्टमर पे इसका कितना इफेक्ट होता है। तो ये तो आपको पता है कि मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज में होता है कि कैसे हम कस्टमर को प्लीज करें। तो आपका ये कहना और बहुत सारे लोग अगर कहते हैं तो देखें कुछ ना कुछ तो असर हो सकता है, अगर नहीं भी कोई असर होता कम से कम आप इससे बरी जिम्मा हो जाते हैं, आपके पास हुज्जत है कि मैंने कहा था। तो क्योंकि ये वाकई ही एक प्रूवन फैक्ट है, साइकोलॉजिस्ट की रिसर्च है और भी रिसर्चेस हैं कि म्यूजिक जितना हमारी सोच को इफेक्ट करता है कोई और चीज नहीं करती, और लोगों को पता भी नहीं चलता कि कैसे ये आपको इफेक्ट करता है, इसकी फ्रीक्वेंसीज कैसे इफेक्ट करती है, ये आपके इमोशंस को कैसे कंट्रोल करता है, और ये जितने भी लोग हैं ये किस तरह से इसमें ऐसी शायरी भी करते हैं। आप देखें आज ये नौजवानों ने जो पैंट्स फाड़ी हुई है, जंजीरें पहनी हुई है, या डिप्रेस रहना, एंग्जाइटी, या यहां से अपने आप को काट रहे हैं या वहां से काट रहे हैं, आप देखें तो ये सिंगर्स पीछे ही उनकी ये तरीके हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं, तो उन्हीं जैसे फिर हुलिये बना लेते हैं। तो ये वाकई ऐसी चीजें हैं जो इंसान के दिमाग को पोल्यूट करती हैं, और इनसे बचना चाहिए। सिर्फ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की इजाजत है, वो है दफ, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में भी बजी थी, और वो भी किसी खुशी के मौके पे, जैसे ईद है उसके ऊपर आप बजा सकते हैं, शादी है उस पर बजा सकते हैं, और उसमें भी ध्यान ये रहे कि शायरी भी ऐसी ना हो कि जिसके अंदर कुछ और ही पता नहीं क्या कहते रहे, वो भी पाक साफ अशआर हो। और बाकी कोई भी चीज इनमें से अलाउड नहीं है। अगर बांसुरी की आवाज पे भी आप सरसर हमने कानों में उंगलियां दे दी थी, तो इतनी हद तक आपको म्यूजिक से नफरत थी, तो हम जो उनके पैरोकार हैं, हम कहें हमें तो ये बहुत अच्छा लगता है। अपने बच्चों को म्यूजिक क्लासेस में डालते हैं लोग, पियानो सीख रहा है फलांस, ड्रम बजाना सीख रहा है जी मेरा बच्चा, और उसे बड़ा फखर हो रहा है जी मेरे बच्चे को ये भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है। ये फखर की बात नहीं, ये तो नफरत करने की बात है। आपके नबी उससे नफरत करते हैं, आपको उससे मोहब्बत है। पता नहीं हमारी कैसी मोहब्बत है अपने नबी से। क्या आप गुनगुना सकते हैं? हाँ, इसकी इजाजत है। अगर साथ म्यूजिक नहीं है, एक शौहर अपनी बीवी के लिए गुनगुना सकता है, बीवी अपने शौहर के लिए कुछ गुनगुना सकती है। हजरत उमर बिन खत्ताब से भी कुछ रिवायात ऐसी मिलती हैं कि गुनगुनाना मुसाफिर का साथी है, कंपेनियन ऑफ ट्रेवलर है। तो अगर आपकी आवाज अच्छी है तो अपने हस्बैंड को आपको गुनगुना के कुछ सुना सकती हैं। मगर इसका मतलब ये भी नहीं है, औरतें को सोचे कि अच्छा बगैर म्यूजिक के गाना ठीक है, तो हम अब स्टेजों पे चढ़ के और आदमियों के सामने हम शुरू कर दें गाना। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में शायरी करा करती थी। तो ऐसे कर सकते हैं, मगर साथ ये नहीं कि वो साथ में गिटार भी बजाना शुरू कर दें। मुझे को गुनगुनाने की तो इजाजत है, मैं गुनगुना ही रहा हूँ, साथ गिटार शुरू हो रहा है, तो ये नहीं सही। फिर तो हमें समझना चाहिए कि कहाँ हमारी लिमिटेशंस हैं, कहाँ पे हमें कितनी किस हद तक इजाजत है, ये हमें समझना चाहिए। ना तो ऐसी इजाजत है कि खुल्लम खुल्ला हमारे यहाँ जो हो रहा है ऐसा लगता ही नहीं है कि इनके दीन के अंदर, बल्कि अभी तक लोग बहस में लगे हैं कि अभी म्यूजिक भी कुछ मना है, म्यूजिक भी कुछ हराम चीज है, म्यूजिक की कितनी इजाजत है और कितनी नहीं है, कुछ पता नहीं। हर जगह म्यूजिक, और बल्कि कोई कह दे सही कि अगर ये तो नहीं सही है, तो उसके साथ कैसे नजरों से देखा जाता है उसको। याद रखे, म्यूजिक सुन के तो कोई नमाजें नहीं शुरू कर देता, कोई अल्लाह ताला की इताअत की तरफ नहीं आ जाएगा आज। लेकिन बाज नातों के साथ ऐसा म्यूजिक है। अब वो अशार बाज दफा अच्छे भी होते, लेकिन उनके साथ म्यूजिक डाला। तो पॉइंट ब्लैंक एक बात, अब हम कहते हैं हमारे हनफी फिक को हम फॉलो करते हैं, कोई कहता है हम शाफी को फॉलो करते हैं, भाई जी तमाम में ही हराम है, अब आप जाएंगे किधर? वैसे हम कहते हैं हम इस फिक को फॉलो करते हैं, आप किसको फॉलो करते हैं जी? तो आप देख लें, जिस फिक को भी आप फॉलो करते होंगे उसके अंदर हलाल है क्या? भाई यहां पे आके हमें कोई परवाह नहीं फिक की। वैसे हमें बहुत इसकी होती कि हम तो हनफी हैं, हम तो शाफी हैं, हम तो फलाना है, और उसके पास उसके ऊपर लड़ाइयां हो रही होती। लेकिन आप कोई फिक ला के दिखाएं जिसके अंदर ये कहा गया हो कि हाँ भी ठीक है। लेकिन आज ऐसे आपको मिल जाती हैं जगह जहां पे आपको ये भी हलाल ये भी हलाल, तो वहां पे तो हर चीज ही हलाल है। उनको अगर आपने देखना है तो फिर आज के आपको मॉडर्न ऐसे लोग मिल जाएंगे, स्कॉलर भी उनको नहीं कहना चाहिए, जो ये इन चीजों को सब कोई हलाल कह देंगे। किस चीज से उनकी फॉलोइंग बढ़ती है, किस चीज से उनकी फैन ज्यादा हो जाते हैं, वो सारे फतवे दे देंगे। तो वस्तफसिस मन इस्तताता मिन्हुम बिसौती का, तो जाओ तुम्हें इजाजत है अपनी आवाज से तुम गुनाह की दावत दो। अब इसमें जिना की तरफ भी इंसान को ले जाया जाता है। उसके बाद उसके जब वो जज्बात उभरते हैं तो उसकी नजरें फिर रुकती थोड़ी है, फिर उसकी नजरें उस हसीन चेहरे पे भी जाएंगी, उसके ऊपर भी जाएंगी, ये भी जाएंगी, सबके ऊपर जा रही। उसके अंदर वो जज्बात, आप लस्टफुल जज्बात जब उनको इंस्टिगेट करती है शायरी और म्यूजिक, ऐसे ही तो नहीं इंसान थरकना शुरू कर देता, ऐसे ही तो नहीं इंसान के पूरे वजूद पे असर आता, दिमाग उस पर लगता है। तो फिर भी समझ नहीं आती कि क्या चीज है जो हमें, क्योंकि हमें हमारा दिल करता है ना, जो दिल करता है वो करना है। क्या हमने वो करना है जो दिल करता है, या वो करना है जिसमें अल्लाह की मर्जी? भला यालमु मन खलक, इसमें यकीन नहीं है? सूरह मुल्क पढ़ पढ़ के रात को सोते हैं, उसमें ये है भला यालमु मन खलक, तो इस पे यकीन नहीं है क्या? वो नहीं जानता जिसने पैदा किया? उसने जब बता दिया तो फिर क्या इसमें प्रॉब्लम है कि जी हमें नहीं समझ आता, इसमें मसला क्या? म्यूजिक आप इतने पीछे क्यों पड़े रहते हैं? अभी हमारे पीछे पड़ने की बात नहीं है, ये शैतानी एक जगह पे आता है, शैतान की आजान। एक है ना अल्लाह की तरफ आजान होती है, जो मुसलमान की आजान है वो अल्लाह की तरफ बुलाती है ना, हय्या लस्सलाह हय्या लस्सलाह, शैतान की अजान कहा गया वो म्यूजिक है। ये शैतान का टूल है जिससे वो इंसान को फांसता है। अबे इंसान को वो देखे ऐसी जुबान पे वो चीज चढ़ जाती है कि वो यानी उसके ऊपर जारी रहती है, बार बार वही फिर वो गाता है वही बेहयाई की बातें। और इसी तरह हर वो आवाज जो बुराई की तरफ मायल करे, बुरे काम को खूबसूरत बना के दिखाए, बुराई की दावत दे, गलत कामों की तरफ लेकर जाए, तो शैतान की आवाज है। तो ठीक है, अब आपको ये तो समझ आ गया ना कि इब्ने अब्बास, सुयूती, हसन बसरी, ये सारे इन्होंने, इब्ने मसूद, इन सब ने कहा कि मजामीर है, मौसीकी है, और इन मौसीकी के ऊपर गाए जाने वाले गाने हैं जिनसे लोगों को हक से दूर किया जाता है, वो तो है ही है। इससे हया खत्म हो जाती है, दिल में बुराई का शौक पैदा होता है, वो तो है ही है। लेकिन साथ हार वो आवाज, चाहे वो किसी बुरी औरत की आवाज है, उसके साथ ऐसी बातें करना जो इंस्टिगेट करती हैं उसके जज्बात को, चाहे वो कोई गालम गलोच है, चाहे वो कोई और ऐसी आवाजें हैं जो कि अल्लाह की इताअत से दूर करती हैं, तो फिर ये सब शैतानी आवाजें हैं। आप कहेंगे नहीं, वो तो उस सिंगर की आवाज है, वो तो इतना खूबसूरत वो गाती है, वो तो इतना प्यारा मजा आता है गाने सुनने में, मजा आता है म्यूजिक में। लेकिन आप ये सोचें कि अगर बता दिया कि ये शैतान की आवाज है, फिर भी हम उसमें मजा लेंगे। वा अजलिब अलैहिम बि खैलिका वा रजलिका, और इनके ऊपर चढ़ा दे अपने प्यादे और अपने सवार और अपने प्यादे। अब इससे यहां पे पता चला कि शैतान की फौजें हैं, और उसकी फौज में इंसानी फौजें भी हैं, जिन्नों की फौजें भी, जिन्नात भी हैं। तो वो अपनी फौजों के जरिए इंसान के ऊपर काबू करता है, इंसान के ऊपर अपनी वो फौजें मुसल्लत करता है। सच्चों से सच्चा कौन इंसान है? सब सच्चों से जिनकी बात कभी झूठ हो ही नहीं सकती, नबी अलैहिस्सलाम और तमाम अंबिया। तो आपको ये मैं बताऊं, आपके नबी ने ही बताया कि ये शैतान अपना तख्त लगाता है पानी के ऊपर, फिर वो अपने चेलों से पूछता है तुम्हारी क्या कारकर्दगी है, जैसे आप पूरे दिन का आपसे पूछा जाए कि अभी आज आपने क्या किया, तो ये अपने एजेंट से, जिन्नात शयातीन से पूछता है। वो कोई कहता जी मैंने ये किया, कोई कहता मैंने उसको हक से हटा दिया, कोई कहता है। सबसे ज्यादा वो खुश उससे होता है जिसने मियां बीवी में जुदाई कर दी। इससे हमें इस हदीस से पता चलता है कि इसका मतलब इनकी मीटिंग्स भी होती हैं, इनकी प्लानिंग्स भी होती हैं, इनके उसके बाद रिव्यू भी होता है, फिर इनकी शाबाशियां भी मिलती हैं। वो तो उठ के उसको गले लगाता है कि तूने सबसे अच्छा तूने काम किया, बाकी भी अपना बता रहे थे जी मैंने ये किया ये किया ये किया, मैंने आज फलाने में झगड़ा किया था, फलाने को कत्ल करा दिया, फलाने का साथ ये किया, फलाने वो फलाने से चोरी करा दी। वो अपनी अपनी कारकर्दगियां बता रहे होते हैं। लेकिन इससे हमें अंदाजा ये कर लेना चाहिए कि वो किस तरह से अपने जाल बिछाता है, और वो उनकी पूरी इसमें टीम वर्क है, पूरी प्लानिंग है, पूरा एक्शन प्लान दिया जाता है, फिर किस तरह से अपने प्यादे और सवार, प्यादे जो यानी तेज सॉरी सवार यानी तेज, और प्यादे तो जो थोड़े स्लो, यानी तमाम किस्म के अपने जो अपने इसके एजेंट्स है ना, एजेंट ही कहेंगे, तो उनको बहकाना है उसकी। तुम अल्लाह ताला ने उस दिन शैतान को पूरी छुट्टी दे दी कि तुम अपने एजेंट्स को लेके ना जो जैसे चाहे करो, तुम्हारे जो फॉलोअर्स हैं जिन्नों में इंसानों में, उनके ऊपर जैसे चाहे तुम अपने प्यादे या सवार उनके ऊपर मुसल्लत करो, उनके ऊपर चढ़ा दो, ठीक है। ये उसको दूसरी आजादी दे दी अल्लाह ताला ने, और ये भी एक चीज है जो कि जिसको समझने की जरूरत है। क्योंकि देखें, अजनबी का मतलब है हांकना, चलाना, वो जबरदस्ती नहीं किसी से कर सकता, लेकिन वो वसवसे डाल सकता है, ख्यालात डाल सकता है, और उसके जरिए वो हमारे घरों में भी आ जाता है, हमारे खाने पीने में भी शामिल हो जाता है, हमारी नमाजों में भी आके हमें तंग करता है। कई जगहों पे है, तो वो भी हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये दाखिल हो जाता है। तो हमें हदीस से पता चलता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सारी रहनुमाई भी कर दी है इस सिलसिले में। हमें हदीस से पता चलता है कि जब इंसान खाना खाने लगता है, तो अगर वो बिस्मिल्लाह नहीं कहता तो शैतान उसके खाने में शामिल हो जाता है। जब हम केयरलेस होते हैं, बातें करते करते हमने खाना शुरू कर दिया, याद नहीं रहा, बीच में कहते हैं बिस्मिल्लाह अव्वल हो आखिर हो, इसी तरह घर में जब दाखिल हो बिस्मिल्लाह कह दें, बिस्मिल्लाह सामने लगा दें कि जब दरवाजे खोले ही तो सामने बिस्मिल्लाह लिखी हो ताकि याद आ जाए, इंपॉर्टेंट काम है, शैतान बुलवा देगा उस वक्त, बाहर निकलते हुए भी बिस्मिल्लाह ही तवक्कल तो अल्लाह ही, ये वाली दुआ पढ़नी है, वो भी बिस्मिल्लाह के साथ है, ताकि इंसान वहां पे भी महफूज हो जाए। बाहर भी निकलते हैं ना, पता नहीं क्या क्या चीजें, घर में दाखिल भी होंगे तो उसका तो नुकसान ही है कि अगर आपने बिस्मिल्लाह नहीं कही तो इसने साथ ही एंटर हो जाना, साथ एंटर हो गया तो फिर होगा क्या, फिर उसके बाद वो घर में झगड़े होंगे, घर में फसाद होंगे, अहम कामों को भुला देगा, दूसरे कामों को सर पे सवार कर देगा, ऐसी चीजें बार बार जहन में लेकर आएगा जो कि गुनाह की हैं, वसवसे डालेगा, किसी के खिलाफ दिमाग के अंदर बातें डालेगा, इंसान को गैर अहम कामों में मशगूल कर देगा, और अहम काम जैसे नेकी का कुआ में नमाज है मसलन, कुरान है मसलन, उसको बुला देगा। तो ये काम इसके लश्कर करते हैं, इसकी जो एजेंट्स है ना वो करते हैं, वो इसी तरह घरों में एंटर हो जाते हैं, फिर वो उनसे कहते हैं शैतान के, देखो हमें घर भी मिल गया, हमें खाने को भी मिल गया, अगर इंसान ने बिस्मिल्लाह नहीं ना कहीं एंटर होके भी और खाने पे भी, तो जो घर भी मिल गया, ठिकाना भी मिल गया, इसी तरह तो रहते हैं ये घरों में, इसीलिए आप देखें घरों में झगड़े कितने होते हैं, इसलिए अल्लाह की नाफरमानियां कितनी होती हैं घरों के अंदर। हम सोचते हैं ये हमारा घर है, किसी को आने नहीं देते, लॉक लगाते हैं हम घर को, लेकिन वो तो हमारे साथ एंटर हो गया जब हमने बिस्मिल्लाह नहीं कही, और जो लॉक बिस्मिल्लाह करके आप लगाएंगे वो ये खोल नहीं सकता। तो इसका तो ये काम ही है ना, इसका फोकस ये है कि इंसान की जिंदगी को अल्लाह की नाफरमानी में गुजर पाए। अब वो जो घर में एंटर हो गया तो घर के अंदर वो काम कराएगा सारे जो कि अल्लाह की नाफरमानी के होंगे, और वो दुनिया को बड़ी करके दिखाता है, दुनिया में गुम कर देता है, इसीलिए हम घर में आए हैं या बाहर गए हैं, गुम हो जाते हैं, किसी ना किसी ऐसी चीज में गुम हो जाते हैं कि फिर उसके बाद हमें होश ही नहीं आता कि दिन कहाँ चला गया, ना नमाज का होश, ना जिक्र का होश, ना शुक्रगुजारी का करने का होश। तो वो तो पूरी प्लानिंग उनकी होती है ना कि फंदा हम कैसे डालें, कहीं लोग रब की तरफ ना चले जाएं। तो चाहे उनकी डायरेक्टली आपको आवाजें नहीं वो कोई दे के कह रहे होते, लेकिन वो या तो किसी के मुंह में अपनी जुबान डाल देंगे, जैसे आपने कोई बात करनी है, अगर कोई और कहना शुरू हो गया ना कि आप ये करें, ये ऐसे करें, ऐसे करें, तो आप उसको क्या कहती हैं, मेरे मुंह में जुबान ना दो, तो मुझे पता है, ऐसे कहते हैं ना, मेरे मुंह में जुबान ना दो, तो वो मुंह में जुबान दे देता है, अरे आप झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, गालम गलोच हो रहा है, अपने तो प्यादे लश्कर छोड़े हैं ना, असल में उनकी बात है, वो आपकी जुबानों से अदा करवा रहा है, शकुक को शुभात दिल में डालता है, इंटरनेट पे बेहयाई के प्रोग्राम देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, फोनों पे क्या हो रहा है, कैसे कैसे दीन के बारे में इंसान को डाउटफुल करता है। तो इस तरह की चीजें, ये जो हिडन उसकी आवाजें हैं, किसी के और के मुंह से आप सुनते हैं, असल में शैतान की आवाज होती है, क्योंकि अल्लाह की नाफरमानी की तरफ लेके जा रहे थे। अब वो हमारा प्यारा अगर आके करता है या फोन में से आ रही है, तो हम सोचेंगे नहीं नहीं ये तो फोन है, नहीं नहीं ये तो हमारे प्यारे हैं,
ये कैसे शैतान हो सकते हैं? वो देखें उनके सर पे सींग नहीं आ जाएंगे, मगर वो जुबान शैतान की बोल रहे हैं। शैतान उनके अंदर आके एक बात कहता है तो फिर वो आगे बोलते हैं। तो अब इसके वो बड़ा तो वो इबलीस है और उसकी ना ग्रुप्स हैं, बड़ी टोलियां हैं। अब किसके ऊपर कौन से ग्रुप को उसने मुसल्लत करना है वो डिपेंड करता है, किसका ईमान ज्यादा बढ़ा हुआ है तो उसके ऊपर बड़ा वाला शैतान, और जिसके ऊपर जिसका इतना कुछ इतना ज्यादा नहीं है तो वो उसके ऊपर छोटा शैतान। इवन ये कि घरों के अंदर आग लगवा देता है, इसलिए आप ने फरमाया चिराग को भी बुझा दो बिस्मिल्लाह कह के, घरों में आग लगवा देता है। जैसे कैसे कि वो कोई किसी जानवर को, किसी को चूहे वगैरह को इसको भगाता है कि वो गिर जाए दिया या चिराग और आग लग जाए, इस तरह से करके। तो इसकी फौज के अंदर ये सारे ही हैं, प्यादे भी हैं, और इसकी फौज के अंदर सवार भी हैं, ऐसे भी हैं बहुत एफिशिएंटली आगे बढ़ रहे हैं, थोड़े स्लो काम करने वाले भी हैं, सब है। अच्छा, फिर इसी तरह अपनी जुबान से भी इंसान अच्छे कलिमात निकाले। जब जुबान से बेकार कलिमात निकलती हैं या ऐसी कोई बातें निकलती हैं तो दूसरे के अंदर वसवसा डाल देता है, कहता देखा तुम्हारे बारे में ये कह रहा, ये भी इसका टैक्टिक है। फिर इंसान जब सजदा करता है ना तो ये बड़ा रोता है, इसको ये होता है कि इंसान सजदा ना करे क्योंकि इसने खुद नहीं ना किया। तो फिर ये एक तरफ जब सब इंसान को देखता है सजदा कर रहा है तो एक तरफ खड़ा होकर रोता है कि मैंने नहीं सजदा किया और मैं जहन्नुम का मुस्तहिक हो गया, और इसने सजदा कर लिया, इसने फरमाबरदारी कर ली है, सजदा करके ये जन्नत का पाने वाला हो गया। तो सजदा इसको बहुत बुरा लगता है, नमाज की तरफ नहीं जाने देता। इसलिए आप देखेंगे कि नमाज पढ़ने वक्त इतने वसवसे आते हैं, अच्छा अभी पढ़ते हैं, अभी पढ़ते हैं, अभी पढ़ते हैं, उतने में टाइम ही गुजर जाता है या लेट ही हो जाती है, जो पढ़ने वाले हैं उनकी भी लेट करा देता है। और हदीस में आता है जब इंसान सोता है तो उसकी गुद्दी के ऊपर 3 गिरे लगा देता है, हर गिरा पे फूंक मारता है कि अभी रात बड़ी लंबी है सोया रहे, रात बड़ी लंबी है सोया रहे। इसीलिए देखे ना हमारा अलार्म भी बज जाता है ना, हम कहते हैं बस 5 मिनट और, बस 2 मिनट और, लेकिन अगर इंसान उठ के अल्लाह का जिक्र करता है तो 1 गिरा खुल जाती। नॉट किस लिए लगाई जाती, बांधने के लिए ना, तो इसको बांधा हुआ समझ ले उसने। तो फिर अगर इंसान उठ के वुजू भी कर लेता दूसरी भी गिरा खुल जाती, जब नमाज भी पढ़ लेता तीसरी भी गिरा खुल जाती, फिर इंसान हशाश बिशाश होकर सुबह करता है। और अगर ऐसा नहीं करता वो तो सारा दिन उसका बस मुर्दा सा रहता है। तो और जो नहीं उठता तो उसके कान में पेशाब कर देता है। इस तरह वॉशरूम में जाए वहां पे भी गंदी जगहों को पसंद करते हैं ना ये, गंदी जगह, कूड़ा करकट की जगह, बेआबाद बियाबान जगह। इसीलिए तो ज्यादातर ऐसी बेआबाद बियाबान जगहों पे जो इनको लोगों को चिमट जाते हैं जिन्नात शयातीन, वो वहीं से चिमटते हैं ना। इस तरह जब घर से औरत निकलती तो खास तौर पे उसको ताकता है, ये हदीस से पता चलता है। इसीलिए औरत पर्दे में निकले, लोगों को कहता है, आदमियों को कहता है इसकी तरफ देखो। तो ख्वाबों में भी आ सकता है शैतान, इसलिए डरावने ख्वाब दिखाता है या फोहश बेहयाई के ख्वाब दिखाता है। तो तब क्या कहना चाहिए, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि तम्माति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व मिन शर्रि इबादिही व मिन हमज़ाति शयातीनी व अन यहदुरून। ये अगर आपको दुआ चाहिए तो आपको दुआओं की किताब में भी मिल जाएगी, हम भी इंशाल्लाह डाल देंगे उस पे। तो आप इस दुआ को अपनी बेड साइड पे रखें, कभी भी आपको ऐसा ख्वाब आए उस वक्त ही ये पढ़ें और राइट साइड पे होके लेट जाएं, उस तरफ लेफ्ट साइड पे धुतकार दें, धुतकार दें थोड़ा सा। इसी तरह नमाज में भी करता है तो थू थू ऐसे करके, जिसमें थोड़ा सा स्पिट भी होता है तो वो आप लेफ्ट साइड पे थू और औज़ु बिल्ला पढ़ें। शैतान उस बंदे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो अल्लाह की पनाह में आ जाए। तो इसी तरह शरीयत के खिलाफ बहकाता है कि ये कैसे हो सकता है, ये कौन से, ये आजकल के कोई चीजें हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसे नहीं हो सकता। और ये जहां तक नमाज का मैंने आपको बताया ना, ये हम तो क्या चीज है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक दफा नमाज पढ़े थे, शैतान आया और आग का शोला लेकर आया तो आप ने उसको हाथ से हटा दिया था। तो ये जो बार बार ख्यालात हमें डालता है ना कि भाई आज कैसे उठें, आज तो बड़ी थकन हो गई है, मेरी तो रात को नींद ही नहीं पूरी हुई ना, तो अब चलो सोते ही रहते हैं, कोई बात नहीं कजा पढ़ लूंगी, ये सब शैतानी टैक्टिक्स हैं। और जिनको अपने घरों में कोई असरात महसूस होते हैं ना, तो वो जरूर या ऐसे तावीज मिल जाते हैं या सुइयां लगी हुई किसी चीज में वो मिल जाते हैं, तो वो जरूर सूरह बकरा पढ़ा करें घर में। और ये नहीं जरूरी कि आपने एक दिन में ही पढ़नी है सारी सूरत, आप 3-4 दिनों में भी पढ़ सकते हैं। तो आप पढ़ के अपने घर में ऊंची आवाज में पढ़े, उसकी कैसेट भी लगा सकते हैं, कैसेट क्या मतलब उस पे ऑडियो प्ले कर सकते हैं। आयतल कुर्सी हर नमाज के बाद भी पढ़े, रात को भी पढ़े, और माऊजात पढ़े, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, आप इस तरह से पढ़ के भी अल्लाह ताला की पनाह में आ जाए। तो इनको पढ़ने से भी आप शैतान के हमलों से महफूज रह सकते हैं। इस तरह आपको अल्लाह ताला का कलाम ही है जो बचा सकता है। याद रखें, शैतान और इसके लश्कर ऐसे हैं, एक किताब है तिलबीस इबलीस, इसमें इबलीस के जो टैक्टिक्स है ना वो बताए गए हैं कि किस तरह से वो इंसान के लिए खुशनुमा करता है चीजें, कैसे किसको कैसे फांसता है, कैसे अपनी आवाजों से फांसता है, कैसे एक औलिया अल्लाह या बड़े आबिद जाहिद उनको कैसे फांसता है जो बड़े नेक लोग होते हैं, कैसे एक आलिम को फांसता है, कैसे एक किसको जिस यानी औरत को क्या कहता है, किसी आदमी को क्या कहता है, मुसलमान को क्या कहता है, काफिर को कहता है, किस तरह से वो यानी इंसान को फांस के अपने जाल में और उससे गलत काम कराता है, वो तरीके क्या क्या कहता है, क्या उसके वसवास होते हैं। तो अब ये सारी चीजें आपको उस किताब में मिल जाती हैं, इमाम इब्ने जौजी की ये किताब है। किताबों से मोहब्बत करना सीखें, किताबों को साथी बनाएं, इसलिए आपको कहा भी जाता है आप लाइब्रेरी जरूर विजिट किया करें, किताबें पढ़ना सीखें। ये नहीं कि हर वक्त ही व्हाट्सएप पे जिसने कोई वीडियो बना के भेज दी बस वो ही समझ लिया यही दीन है, नहीं, ऑथेंटिक किताबों को अपने मुताले में रखें। कोशिश किया करें कि रात को सोने वक्त बजाय इसके कि हम टीवी देखें या हम फोन देखें, कोई किताब का मुताला करें। सही इल्म किताबों से मिलता है और सही वाली किताबें जो है, तो इस तरह से ये इंसान को इंसान के ऊपर अपनी पैदल फौजें और अपनी सवार फौजें चढ़ाता है। और ऐसे तरीके इस्तेमाल करता है कि जो इंसान को अल्लाह से दूर करने वाले हैं, जो नेकी में ज्यादा आगे बढ़ जाए उसके लिए उसके पास और तरीके हैं, जो नेकी में कम हो उसके लिए और तरीके हैं। हम सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلاً قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا